समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियां होंगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून अतहर। I'm so happy to see the girls at Asian Games adding the golden glow as India is poised for its best ever Asiad performance this time in China. We have crossed the 70 medal haul of the Jakarta Games with 74 medals till now, hoping to win more in the coming days. Of course, champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside of them, a desire, a dream, a vision.
बिल्कुल।
From running track to playing badminton and tennis, and this time in new events like javelin, decathlon, and of course the new one, equestrian. These persons in sports gave it their all and made sure that they do their best every time they are out on the field. Best wishes to them and more power to them as they bring glory to the entire nation. Shall we begin with the news headlines now, Athar?
बिल्कुल अनुजा। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई जिलों में भारी क्षति, सेना के 23 जवानों समेत कई लोग लापता।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान टुमारो टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स।
सीबीआई की विशेष अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की जमानत मंजूर की।
हैवी रेनफॉल रिपोर्टेड इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बिहार।
और भारत ने हांगचौ एशियाई खेलों में 74 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी के मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहाई ने रजत पदक जीता।
And Athar, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Animal Welfare Day. Every year on this day, that is 4th of October, people around the world come together to celebrate World Animal Day, also known as World Animal Welfare Day. The day is celebrated to raise awareness about the welfare standards of animals and animal rights. By increasing awareness and improving education worldwide, those involved are helping to create a space recognizing wild and farmed animals as sentient beings with thoughts, feelings and individual personalities. Their animal welfare practices and treatment must reflect this.
बिल्कुल अनुजा, विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और जानवरों में अगर हम देखें तो पिछले 1970 से अगर हम बात करें तो 2010 के बीच में लगभग 50% कमी आई है। और ये सोचनीय बात है जलवायु के परिवर्तन के अगर आप अंदाज से देखें या जो एक बैलेंस होता है नेचर के बीच में, जो बैलेंस होता है उसके अगर एतबार से देखें तो बहुत सारी चीजें असमानता की तरफ जा रही हैं। तो पशुओं का संरक्षण बेहद जरूरी है। दुनिया भर में 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है और इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। और विश्व पशु दिवस के अवसर पर पशुओं की विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और उनके संरक्षण को लेकर काफी चर्चा की जाती है। यह दिन जानवरों के अधिकारों और कल्याण के लिए वकालत को प्रोत्साहित करता है। ये इस विचार को बढ़ावा देता है अनुजा के जानवरों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए और इनके अधिकारों को कानून के तहत संरक्षित करना चाहिए।
Yes, Athar, actually animals are being slaughtered around the world. Yes. And to improve the condition and lives of animals around the world, this day is celebrated. Various communities, groups, clubs and welfares who are against the brutal behavior on animals get encouraged.
बिल्कुल ठीक कहा अनुजा। एक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो एक सर्वे में ये पता चलता है कि हर एक वर्ष विश्व भर में लगभग 56 अरब जानवरों की हत्या कर दी जाती है। दुनिया भर में हर सेकंड में लगभग 3000 जानवरों की मृत्यु हो जाती है। जाती है, जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि समाज और पर्यावरण में सीधे तौर पर पड़ता है.
राइट. ऑन फैक्ट्री फार्म्स एनिमल्स लिव इन अननेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड एंड्योर नीडलेस एंड एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सफरिंग. वाइल्ड एनिमल्स हैबिटेट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड टू ग्रो द क्रॉप्स टू फीड बिलियंस ऑफ फार्म्ड एनिमल्स. फैक्ट्री फार्मिंग इज अ ग्लोबल इशू एंड ओनली विद अ global solution can animals be safeguarded and animal welfare can be improved. Of course, as we said, at a time when technology has made us all less sensitive, it is important to teach children to have compassion for all living creatures.
बिल्कुल, दया सबसे बड़ी चीज होती है और वो पशुओं के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है. अनुजा, हम देखते हैं कि जो गलियों में कुत्ते होते हैं उनको हम बड़ी बेदर्दी से पत्थरों से मार दिया करते हैं, लाठियों से मार दिया करते हैं. ये क्रूरता है. ये क्रूरता चाहे वो मानव के प्रति हो, चाहे वो जानवर के प्रति हो, चाहे पक्षियों के प्रति हो, तो क्रूरता के अगेंस्ट में हमें खड़ा होना पड़ेगा. पहली बात. दूसरी बात, बिल्लियां हैं जो घरेली बिल्लियां हैं उनको दुत्कार दिया जाता है. उनको बजाय पुचकारने के दुत्कार दिया जाता है. तो पुचकारने की जो एक आदत है उसको हमें बढ़ावा देना होगा. कई बार हम पैट रखते हैं, पैट से तो हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन वही आवारा जानवर की आवारा पशु के रूप में अगर हमारे दरवाजे पर आएगा, भूखा होगा, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, तो हम उसको दुत्कार देंगे, भगा देंगे. इसी तरह से अगर क्रूरता की बात को आगे हम बढ़ाएं तो घोड़े तांगे में घोड़ों का इस्तेमाल होता है. चाबुक से मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया जाता है. तो ये रुकना चाहिए. मनोरंजन के लिए पशुओं के साथ बड़ी क्रूरता की जाती है, चाहे वो डॉल्फिन की बात हो. डॉल्फिन को हमने खिलौना बनाकर रख दिया है. कई जगह वाटर पूल्स होते हैं, उसमें डॉल्फिन के तरह तरह के करतब दिखाए जाते हैं. सर्कस पर हालांकि अब जाकर कुछ बंदिश जरूर लगी है, लेकिन वहां पर भी हाथियों की बात हो, शेर की बात हो, घोड़ों की बात हो, उनको तमाशा बनाकर रख दिया जाता था. तो ये क्रूरता की श्रेणी में आता है और क्रूरता किसी भी श्रेणी में हो उसको हमें रोकना चाहिए.
यू आर वेरी राइट अथर. आवर रीजंस फॉर लविंग एनिमल्स इज नॉट बेस्ड जस्ट ऑन एम्पैथी. हाउएवर द ट्रूथ इज दैट एनिमल्स पर्टिकुलरली आवर पेट्स ऑफर ह्यूमंस अ वैरायटी ऑफ पावरफुल बेनिफिट्स.
बिल्कुल.
लाइक स्टडीज हैव डिटरमिन्ड दैट पेट ओनर्स एंड एनिमल लवर्स आर लेस लाइकली टू बी लोनली. पेट ओनरशिप हैज बीन फाउंड टू बी associated with lower levels of social isolation and increased social support. Secondly, spending time with a pet has been found to lower your blood pressure also. And many of us all yearn for unconditional love.
अनुजा, आपकी बात रोक रहा हूँ यहाँ पर. कई बार हम तनाव की बात करते हैं, कई बार हमें इंसोमिया की बात करते हैं, कई बार डिप्रेशन की बात करते हैं. मैं कहता हूँ इंसान अगर आपको संतुष्ट ना कर पाए, जानवरों से दोस्ती करके तो देखिए. जानवर आपको कितना प्यार देंगे, कितना दुलार देंगे, कितने आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे. एक मरतबा आप पशुओं के नजदीक जाकर देखो. हम बंदरों को देखते हैं, बंदरों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार होता है. बंदरों के साथ भी जो क्रूरता है उसको हमें खत्म करना होगा.
Yes, we want someone who loves us for who we are. Who has zero expectations, who is always happy to see us, no matter how grumpy we may be feeling, who can know us and communicate with us without ever needing to speak a word, and with whom we can have no fear of judgment. We crave unconditional love, and in human relationships, this precious commodity can be difficult to find, especially among adults. So pets, however, can help to fill this need. Do you agree to me, Athar?
आपने प्यार की बात की है. प्यार जो है unconditional होना चाहिए, और पशुओं के साथ भी अनकंडीशनल अगर हम प्यार करेंगे तो वो भी अनकंडीशनल प्यार हमें वापस करेंगे. ये वादा है. चाहे वो कुत्ते की बात हो, कुत्ता आपकी रखवाली के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक गवा दिया करता है. कोई भी जानवर हो, प्यार की भाषा देखिए सब समझते हैं. और इसके लिए हालांकि क्रूरता की बात जैसे हमने समझाने वाली बात कही है, ऐसे बहुत सारे पशु प्रेमी इस फील्ड में काम कर रहे हैं. उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी पशुओं के संरक्षण के लिए और उसके लिए जागरूक करने में लगा दी है. लेकिन कानून से भी संरक्षण प्राप्त है. पशुओं के प्रति अगर हम क्रूरता करते हैं तो जो कानून है, कानून उनकी सुरक्षा करता है.
यस, एंड दिस टाइम द थीम फॉर द वर्ल्ड एनिमल डे इज ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल. सो वी एज ह्यूमंस नीड टू टेक केयर ऑफ देम एंड ट्रीट देम विद ऑल द लव एंड अफेक्शन दे डिजर्व. So this Animal Day, I urge all my fans to take care of the animals around them, be it by adopting any animal, joining any NGO that supports them, or by just giving food and water to the ones in your neighborhood.
नतीजा यही निकला है कि चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता खाने पीने की बात तो आपने कर दी, लेकिन इसके अलावा अगर भावनात्मक रूप से अगर मैं बात करूं तो अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो प्रेम की है. प्रेम की है, और सिर्फ प्रेम की है. प्रेम के साथ हमें पेश आना चाहिए, उनके संरक्षण में अपना योगदान करना चाहिए. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या है उनके पास विशेष समाचार। अनुजा, तो इस कड़ी में पहले हम हरियाणा चले।
चलिए।
हरियाणा सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला 3 नवंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर तक चलेगा। हालांकि मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से छोटा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए हरियाणा पर्यटन विकास निगम इस मेले को भी भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियों में जुड़ गया है। चलिए इस पर सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट अश्विनी कुमार की।
हरियाणा पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकीय निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों की मनोरम छटा के बीच मौजूद सूरजकुंड मेला परिसर अपने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बार पर्यटकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस मेला परिसर में पहली बार दिवाली मेला आयोजित करने की स्वीकृति दी है। ऐसे में पहले दिवाली मेले को लेकर हरियाणा पर्यटन विकास निगम ने पूरी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने बताया कि दिवाली मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से छोटा रहेगा। सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार लगने वाले दिवाली मेले के लिए परिसर के एक तिहाई क्षेत्र को ही प्रयोग किया जाएगा। शुरुआत में पहले साल करीब 300 स्टॉल ही तैयार किए जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेले का फोकस शिल्पकारी पर होता है, इसलिए इस मेले को शिल्पकारी की बजाय दिवाली के सामान व त्योहार से जुड़ी खरीदारी पर केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में बड़ी चौपाल लगाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिससे पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई दे। इसके साथ ही दीपोत्सव खास आकर्षण रखने वाला रहेगा। उन्होंने बताया कि प्राचीन सूरजकुंड को दीपों से सजाकर दीपोत्सव करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति लेने के लिए पत्र लिखा गया है। जल्द ही ये अनुमति मिलने की भी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मेले में खान पान के लिए विशेष तौर पर फूड कोर्ट भी सजाए जा रहे हैं। यहाँ दिवाली मेले में आने वाले पर्यटक अच्छे खान पान का आनंद ले सकेंगे। श्री नीरज कुमार ने बताया कि मेले का उद्देश्य पर्यटकों के त्योहारी सीजन को खास बनाना है और इसके लिए हरियाणा पर्यटन विकास निगम तैयारियों को बेहतरीन तरीके से करने में जुटा है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
चलिए अनुजा, थोड़ी अंतरिक्ष की बात कर ली जाए। धरती की बात की है तो आसमान की तरफ भी देखा जाए। आसमान में हम देखिए एक से बढ़कर एक मील के पत्थर हम कायम करते जा रहे हैं, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे वो आदित्य L1 की बात हो।
एब्सोल्युटली अथर, वर्ल्ड स्पेस वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम टुडे एंड दिस ईयर द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक इज स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन गुजरात, द गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद SAC ISRO and the Science City will celebrate the World Space Week in a grand way to celebrate the success of Chandrayaan 3 and Aditya L1. As part of the celebrations, various activities will be planned across the state. Let's hear what our correspondent has to say.
Gujarat, the home of father of India's space program Vikram Sarabhai, has kick-started the celebrations of World Space Week in a grand way today at Science City in Ahmedabad. Talking to Akashvani, advisor of Gujarat Council of Science and Technology, GUJCOST, Narottam Sahu said, in view of the increasing opportunities in the space sector, not just in research but also in the commercial field, GUJCOST will organize a series of activities in association with ISRO-SAC across the state in this week. He said around 1 lakh students are expected to participate in celebrations.
आज से शुरू होकर के ये यात्रा हमारा अपने रीजनल साइंस सेंटर पाटन, भोज, राजकोट, भावनगर तक जाएगा। इसके साथ हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर है, यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे भी अलग अलग प्रोग्राम होगा, अलग अलग कंपटीशन रखा है, जैसे स्पेस टॉक विद साइंटिस्ट, मॉडल रॉकेट डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेस पैरेड होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको हम लोग स्पेस का कॉस्ट्यूम लगाए हैं कि वो कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है, कोई स्पेस साइंटिस्ट बन सकता है, कोई स्पेस वॉक कर सकते हैं। इनका मॉर्निंग में स्पेस पैरेड रहेगा, स्पेस म्यूजिकल इवनिंग रहेगा। जैसे हम लोगों का पुराना कोई मूवी में और स्पेस का ट्यूनिंग था, तो इसी को लगा करके हमारा भी म्यूजिकल इवनिंग होगा, म्यूजिकल डांस भी बच्चे करेंगे, पेपर प्लेन्स उड़ाएंगे, स्पेस मूवी का स्क्रीनिंग करेंगे, मॉडल मेकिंग करेंगे एंड रात को स्काई ऑब्जर्वेशन करके चंद्रमा एंड प्लैनेट दिखता है इसको देखेंगे।
ऑल द कॉम्पिटिशन्स विल बी हेल्ड अंडर द थीम ऑफ स्वच्छ भारत स्वच्छ स्पेस टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग सस्टेनेबल स्पेस अमंग स्टूडेंट्स। फॉर परिक्रमा, दिस इज अपर्णा खुंट, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
बिहार में जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को नए ब्रांड का नाम से बेचने की शुरुआत की गई है। सरकार ने इसका नाम मुक्ति ब्रांड रखा है, जो 100 से अधिक उत्पादों पर लिखा रहेगा। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार के जेलों में सजा काट रहे बंदियों द्वारा वर्षों से बहुपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होने से उनका विपणन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। अब कारा विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इसका शुभारंभ किया। इसके तहत मसाला, सत्तू, हर्बल चाय, खादी वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, फुटवियर, रस्सी, साबुन, हस्तशिल्प सहित 100 से अधिक प्रकार के उत्पादों को ब्रांडिंग कर लोकप्रिय बनाया जाएगा। जेल IG सिरसत कपिल अशोक के अनुसार 8 केंद्रीय और 2 मंडल स्तरीय जेलों में अभी कारा उद्योग संचालित हैं। इनके माध्यम से वस्तुओं और सामग्रियों का उत्पादन होता है। इसका विस्तार अन्य 50 जेलों में भी किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत बंदियों को कौशल प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे जेल में बंद कैदियों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में भी मदद मिलेगी। इस कार्य से कैदियों का कौशल निखरेगा और विविध प्रकार के उत्पाद भी बाजार में आएंगे। इससे कैदियों के परिवारों को भेजे जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी होगी और उन लोगों के कल्याण के लिए अधिक राशि जुटाने में मदद मिलेगी। इन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई जेलों में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके। बक्सर के आदर्श कारा में कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली मनीला रस्सी अपने गुणवत्ता के कारण काफी प्रसिद्ध है। इस विशेष रस्सी की तरह राज्य के जेलों के कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं, जो आने वाले समय में बेहतर नाम कमा सकती हैं। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
And Athar festival days are very soon going to start after the Shraddh days are over. And of course, the Dashehra, then comes Diwali, Chhath, and of course, Dev Diwali also is a very big...
और इसी पर ठहर कर बात करते हैं अनुजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दीपावली इस साल 27 नवंबर को मनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवलोक से स्वयं देवता दीपावली मनाने काशी आते हैं। चलिए इस पर सुनते हैं कुछ और जानकारी अपने संवाददाता आदित्य शुक्ला से।
वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। इस दिन गुरु नानक जयंती का शासकीय अवकाश भी रहेगा। देव दीपावली की तिथि की घोषणा के साथ ही काशी में इसके भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता वाली गंगा महोत्सव समिति ने सभी पक्षों से बातचीत के बाद देव दीपावली के लिए नवंबर की 27 तारीख निर्धारित की है। देव दीपावली का आयोजन काशी के सभी घाटों पर किया जाएगा। कुछ विद्वानों ने 26 नवंबर को देव दीपावली के लिए उपयुक्त माना था, जिसके बाद तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान देव दीपावली से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनका पक्ष जाना गया। इनमें देव दीपावली से जुड़ी समितियां, होटल एसोसिएशन, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, पुलिस, पंचांग के विद्वानगण और काशी विद्युत परिषद सहित अन्य लोग शामिल थे। देव दीपावली काशी के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दिन काशी के घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमग होते हैं। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी पहुंचते हैं। देव दीपावली का त्यौहार काशी की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। इस पर्व पर वाराणसी के अधिकांश होटल और धर्मशालाएं पर्यटकों से खचाखच भरी होती हैं। लाखों की संख्या में लोगों के काशी आने से दुकानदारों, फल फूल विक्रेताओं, वाहन चालकों की आमदनी में इजाफा होता है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन और भव्य हो गया है। परिक्रमा के लिए वाराणसी से मनीष सिंह के साथ गोरखपुर से आदित्य शुक्ला।
And now it is time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Mandvi ma janm lai jan rasht prem nibhaviyo
Mandvi ma janm lai jan rasht prem nibhaviyo
Are bhanushali na sapute inqilab jagaviyo
Today is the birth anniversary of well-known freedom fighter and revolutionary Shyamji Krishna Varma. He was born on the 4th of October, 1857 in Manvi, a port town in the formerly princely state of Kutch in Gujarat. After completing his schooling in Mumbai, he studied at Balliol College in Oxford. In 1881, the then Secretary of State for India sent him to represent the learning of his country at the Berlin Congress of Orientalists. There he not only read his own paper on the subject of Sanskrit as the living language of India, but also read a patriotic Sanskrit poem and translated it into English for the audience.
In 1885, he returned to India and enrolled himself as an advocate of the Mumbai High Court and started his practice. During his stay in India, Shyamji was very much impressed with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. He initiated a very friendly relationship with Tilak, which inspired him to the nationalist movement.
Shyamji settled in London after his return to England in 1897. In 1905, he was barred from practicing law by London's Inner Temple on charges of sedition for writing against the colonial government. Verma was posthumously reinstated by the Inner Temple in 2015 after the Inn's governing council noted that it did not receive an entirely fair hearing.
He founded the Indian Home Rule Society in London in 1905, which was aimed at promoting self-rule in British India. He also founded the India House in London in the same year, which was a base of revolutionary activities against the British rule. Verma edited the monthly Indian Sociologist, an organ of freedom and of political, social and religious reform.
In 1914, Verma moved to Geneva and spent the rest of his life there. Shyamji Krishna Verma died on March 30, 1930, with the wish that his ashes be returned to his motherland after it has attained freedom. In August 2003, Gujarat Chief Minister Narendra Modi went to Switzerland and got back the ashes of Shyamji Krishna Verma and his wife. Today is also the birth anniversary of freedom fighter Subramanya Shiva. He was born on 4th October 1884 in Madurai. He was the first person to be imprisoned in Madras by the British over sedition charges. Shiva was one of the greatest nationalists of the Tilak era. Shiva persuaded many young men to join the freedom movement by establishing Dharma Paripalan Samaj. This led to his 6 years of severe imprisonment by the British in 1908.
Through the monthly journal Gyan Bhanu, he edited and published, Shiva kept the freedom struggle alive while in prison. He passed away on 23rd of July 1925. To commemorate Shiva's contribution to the freedom struggle, former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha inaugurated a memorial in his honour in Paparapatti in 2012.
Today is also the birth anniversary of a freedom fighter and revolutionary, Tirupur Kumaran. He was born on 4th October 1904 in Chennimalai, which is presently Erode in Tamil Nadu. While the independence movement was gaining momentum in the country, Kumaran too found himself influenced.
Inspired by Mahatma Gandhi's principles and ideals, Kumaran began to participate in the demonstrations announced by Bapu.
When Gandhiji led a demonstration in Bombay in 1932, the British decided to arrest him. There were riots and protests against his arrest all over the country. The protests had people carrying out the national flag, which was banned at the time, in honour as well as in revolt. One of the participants holding the flag was Tirupur Kumaran. When the British police started lathi charge on the protesters, Kumaran did not leave the premises. The cops thrashed the protesters, including Kumaran, who fell but did not let the flag touch the ground. The 27-year-old freedom fighter succumbed to his injuries on 11th January 1932.
And now in the business news for the day, the key domestic share indices ended around 0.5% down. The BSE Sensex closed near the 66,500 mark, while the NSE Nifty ended below 19,550 points. Both indices fell marginally amid negative global cues. The Sensex finished 316 points down at 65,512, while the Nifty settled 110 points down at 19,529. In the forex market, the rupee closed at 83.24 rupees against the US dollar. At the multi-commodity exchange, gold futures for December contracts were trading around 56,265 rupees per 10 grams. And in intraday trade, Brent crude was trading at $89.30 per barrel. What do you have from the world of sports?
बिल्कुल, अब एशियाई खेलों की बारी है और उसकी अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में शशांक कुमार हैं। शशांक कुमार, क्या अपडेट है एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो?
अतर मेडल की बरसात जारी है और आज चीन को हांगचांग में अगर हम देखें तो एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण 27 रजत और 32 कांस्य सहित 75 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और ये भारत का एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय दल ने पिछले एशियाई खेलों के 70 पदकों को पीछे छोड़ा है।
शशांक, क्या शतक पूरा होगा पदकों का?
पक्का होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मेडल प्रॉस्पेक्ट हैं, एथलेटिक्स में इवेंट्स हैं और बहुत सारे और भी आएंगे। देखिए, जैसे तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवाले की जोड़ी जो है देवताले की, वो उसने स्वर्ण पदक आज जीता। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक हासिल किया।
बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपना 100% दिया। मैंने सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। ये कंपटीशन मेरे लिए क्वालिफाई ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ओलंपिक तक इस कलर को चेंज करूँ।
लवलीना कलर बदलेंगी और वहीं मुक्केबाजी में एक और मुक्केबाज परवीन हुडा ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में सुशील कुमार ने ग्रीको रोमन में कांस्य पदक अपने नाम किया। 35 किलोमीटर रेस वॉक में मिक्स टीम में रामबाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता था। स्क्वैश में मिक्स डबल्स में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी को कांस्य पदक मिला। वहीं दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल सिंह की जोड़ी जो है वो फाइनल में चली गई है। सौरभ घोषाल ने भी फाइनल में सिंगल्स की जगह बना ली है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एचएस प्रणय ये सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। डबल्स में भी हमारी जोड़ियां जो है वो अंतिम 8 में पहुंची हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। कबड्डी में भी दोनों टीमों ने जीत हासिल की और इस समय जो महामुकाबला चल रहा है वो एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार खेल रहे हैं। इसके अलावा और भी इवेंट्स चल रहे हैं पर सबकी निगवाहें पुरुषों की और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम पर भी होंगी। तो ये सारे जो मेडल्स हैं ना, अब की बार 100 पार कराएंगे। अतर
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शशांक कुमार एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के लिए। और अब समय है श्रोता उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनका आज है जन्मदिवस, और इस कड़ी में सबसे पहले हम याद करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, निबंधकार और रचनाकार रामचंद्र शुक्ल को, जिनकी आज जन्मदिवस है। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाओं में एक का तो हमने जिक्र किया, हिंदी का साहित्य का इतिहास, और इसके अलावा चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर वगैरह नागरी प्रचारणी पत्रिका प्रमुख हैं।
यस, एंड द नेक्स्ट इन लाइन इन द पर्सनालिटीज, इन द ईयर 1972 अ रेडियो चैनल रिलेड अ सॉन्ग बंग बंधु फिरे एलो तोमार स्वप्नेर स्वाधीन बंगले। The song was such that impacted an entire nation. The song had the power to soothe the newly formed country Bangladesh, which was broken by the Liberation War of 1971. The singer of the song was none other than Sandhya Mukherjee, who was born today in the year 1931. And in spite of her great repute and fame, Sandhya Mukherjee was well known for her humbleness. Her dedication to her work was such that during the recording of a song, the producer had changed the line, and she was so humble, and an artist of such repute usually would react to such a proposal, but Sandhya Mukherjee was patient enough to listen to the changed version over telephone and picked it up overnight, and she came again for re-recording.
घूम घूम चांद झिके मिके तराए माधव विरात आशे नी तो बुझियार जीवने अमार। घूम घूम चांद झिके मिके तराए माधव विरात आशे नी तो।
Her voice was such that it made people cry. Even legends like Uttam Kumar could not stop his tears on one occasion.
और आज जन्म दिवस है लोकप्रिय पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह का। उन्होंने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में कई हिंदी और कुछ मराठी गीतों को अपनी आवाज दी। उनके अगर प्रसिद्ध गीतों की बात करें तो बॉबी फिल्म से, जहरीला इंसान, खेल खेल में, दो जासूस, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी, आपकी खातिर, परवरिश, खट्टा मीठा, आंखियों के झरोके से, ये वो दौर था जब एक से बढ़कर एक गीत उनके आवाज में सुने गए।
तुमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, हम तुम सनम
रातों जन्म मिलते रहे हो जैसे.
So this was the song from the film Khel Khel Mein, which rocked the entire nation.
और शताब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए अतहर सईद और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.